नमस्कार भारत, तारीख 25 सितंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं विनीत खरे। सऊदी अरब में भगदड़ से मौत के बाद सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा। उधर ईरान ने सऊदी अरब पर पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पाने का आरोप लगाया।
कई सारे लोग अपने खेमों से निकलकर बाहर आके अपने सर को हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि आने वाला मरहला कैसे तय होगा।
अमेरिका दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात। भारत से मवेशी ले जाने पर पाबंदी के बाद बांग्लादेश में गोमांस की कमी।
मुझे पिछले एक साल से नुकसान हो रहा है, मैं उधार ले लेकर अपना धंधा चला रहा हूँ।
और कहानी पंजाब के गांव की, जहाँ के युवा पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अशोक कुमार से। सऊदी शाह सलमान ने हज यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़ी नीति की पूरी तरह समीक्षा किए जाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये आदेश कल हज के दौरान हुई भगदड़ में 700 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद दिया है। ये भगदड़ मीना में शैतान को पत्थर मारने की धार्मिक रस्म के दौरान हुई, इसमें 800 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। उधर ईरान ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया है कि वो हज श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा है। पोप फ्रांसिस ने हज के दौरान हुई भगदड़ के बाद मुसलमानों के साथ एकजुटता जताई है। न्यूयॉर्क के सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में प्रार्थना के दौरान पोप ने भगदड़ में हताहत हुए लोगों के प्रति संवेदना जताई। इससे पहले उन्होंने वॉशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस को संबोधित किया। अपने भाषण में पोप ने अमरीका में प्रवासियों से मानवीय सलूक किए जाने की अपील की। उन्होंने अमरीका से मौत की सजा को खत्म करने की मांग की, जबकि गर्भपात के सिलसिले में पोप ने सभी इंसानी जिंदगियों की सुरक्षा की अपील की। पोप के संबोधन के दौरान मौजूद डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद डेबी डिंगल ने बताया, उनका एक सीधा सा संदेश था, संदेश था सहनशीलता। उन्होंने कहा कि आओ एक दूसरे के बारे में फैसले करते हुए हम इतने सख्त ना बने। उन्होंने लोगों से एक दूसरे को समझने और सहनशील होने को कहा। ये थे अमरीकी सांसद डेबी डिंडल के शब्द। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। अब दोनों नेता रात्रि भोज पर कई अहम मुद्दों पर बात कर सकते हैं, जिनमें चीन की कथित साइबर जासूसी और क्षेत्रीय विवादों के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य तैयारियों जैसे मुद्दे उठ सकते हैं। वॉशिंगटन पहुंचने से पहले चीनी राष्ट्रपति शी ने सिएटल में उद्योग और तकनीक जगत की बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों की पेरिस में मुलाकात हो रही है और वो सीरिया में संकट खत्म करने को लेकर साझा रुख तय करने पर चर्चा कर रहे हैं। इस संकट की वजह से यूरोप में बड़ी संख्या में शरणार्थी पहुंच रहे हैं। इससे पहले जर्मन चांसलर ने सीरिया राष्ट्रपति बशर अल असद को भावी वार्ताओं में शामिल करने पर जोर दिया, हालांकि अन्य देश इस बात से सहमत नहीं है। रूस ने कहा है कि जब आगामी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मिलेंगे तो उनकी बातचीत में सबसे पहला मुद्दा सीरिया से जुड़ा होगा। वहीं ओबामा के प्रवक्ता का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति पुतिन से अपनी चर्चा में सबसे ऊपर यूक्रेन को मुद्दे को रखना चाहते हैं और मेक्सिको में पिछले साल लापता हुए 43 छात्रों के परिजनों से राष्ट्रपति एनरिक पेनाटा ने एक विशेष जांच दल बनाने का आश्वासन दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं, मैं हूं विनीत खरे। मक्का के पास कल हुई भगदड़ में 717 लोगों की मौत के बाद सऊदी शाह सलमान ने हज यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। यह भगदड़ कल उस समय हुई जब मीना में शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जा रही थी। इस घटना में 863 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस साल लगभग 20 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। हादसे के बाद ईरान ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया है कि वो हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रहा है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए अशोक कुमार से।
पिछले 25 साल में हज यात्रा के दौरान ये सबसे बड़ा हादसा है। मीना में शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा करने के दौरान मची भगदड़ में 717 लोग मारे गए हैं, जबकि 800 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। घटना के बाद सऊदी शाह सलमान ने सालाना हज यात्रा के लिए मौजूदा व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों की नए सिरे से समीक्षा का आदेश दिया है। टीवी पर प्रसारित एक संदेश में उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी जताई। बेहद दुखद त्रासदी, हमने संबंधित संस्थाओं को आदेश दिया है कि वो जांच करें और जल्द से जल्द हमें जांच का नतीजा बताएं। हम धार्मिक रस्मों में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए अपनी सुरक्षा कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वो हज से जुड़ी मौजूदा नीति का फिर से मूल्यांकन करें। ये थे सऊदी शाह सलमान के शब्द। दूसरी तरफ ईरान ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया है कि वो हज श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनाई ने सऊदी अधिकारियों पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। ईरान के विदेश उपमंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने कहा, निश्चित तौर पर ये तो साफ है कि जमरात की तरफ श्रद्धालुओं की आवाजाही का काम संभाल रहे अधिकारियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, जिसकी वजह से ये त्रासदीपूर्ण घटना हुई। सऊदी अधिकारियों को इसकी जवाबदेही तो तय करनी होगी। ये थे ईरानी विदेश उपमंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला के शब्द। मरने वालों में 95 श्रद्धालु ईरान से हैं। हज के दौरान श्रद्धालु मक्का से 5 किलोमीटर दूर मीना में जाते हैं, जहां जमरात कहे जाने वाले 7 स्तंभों को पत्थर मारने की रस्म अदा की जाती है। ये स्तंभ शैतान के प्रतीक हैं। पत्थर मारने की रस्म के दौरान इससे पहले भी कई बार भगदड़ की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जाने गईं।
ये थे अशोक कुमार। मैंने थोड़ी देर पहले मीना में मौजूद अरब न्यूज के संपादक सिराज वहाब से संपर्क किया और उनसे लोगों का हाल पूछा।
लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि 15 दिन पहले मक्का के अंदर एक क्रेन का हादसा हो गया, क्रेन गिरने से 111 लोग जो है वो मारे गए। तो लोगों के अंदर शुरू से चिंता थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, जो वाकया हुआ है इससे उनके हाजियों का जो मनोबल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो बुरी तरह से शेक हो गया है। हिंदुस्तान और दूसरी जगह से तमाम सारे लोग जो हाजी आए हुए हैं, उनके घर वाले परेशान है, उनको मुस्तकिल कॉल कर रहे हैं। जो लोग अपने कर्मों में वापस नहीं आए हैं, लोग उनको ढूंढने के लिए अस्पतालों में घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मीना के अंदर कई सारे लोग अपने खेमों से निकलकर बाहर आके अपने सर को हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आने वाला मरहला कैसे तय होगा।
जो भारत और पाकिस्तान के जो इन इलाकों के जो लोग हैं, उनकी भी फिर जो मृतकों की संख्या आपको लगता है फिर बढ़ेगी?
ये जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हाजी हैं, जो उनके जो खेमे, उनके जो टेंट है, वो इस स्ट्रीट पे नहीं थे, वो दूसरी स्ट्रीट पे है, जिसको एक शेख अल अरब स्ट्रीट कहते हैं और एक अल जौहरा स्ट्रीट कहते हैं। ये दोनों स्ट्रीट जो है, ये वन वे स्ट्रीट टुवर्ड्स जमरात जाती है। तो वो जमरात की तरफ जब कंकड़ियां मारने गए तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन इंडियन काउंसिल जनरल का ये कहना था कि कई सारे हाजी जब लौटते हैं तो इसी रास्ते से लौटते हैं जहां पर ये हादसा हुआ। तो उनका ये शक था कि शायद हो सकता है उसके अंदर जो है हिंदुस्तानी भी होंगे। अब ये जो शनाख्त है और जो आइडेंटिफिकेशन है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये तमाम सारे लोग एहराम की हालत में थे, एहराम पहने हुए थे। एहराम उस वक्त ही निकलता है जब ये पूरी कार्रवाई की कंकरियां वगैरह तमाम सारी चीजें हो जाती है। तो लोग एहराम में थे, तो कई सारे लोगों की जो है अब शनाख्त करना, मेसेज लिस्ट बनाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक दूसरा चैलेंज ये है कि अभी 2 दिन बाकी है हज के, यानी 2 इम्पोर्टेंट कार्रवाइयां बाकी है, और आखिर में तो तमाम सारे लोगों को जो है मक्का जाके वो सवाल भी करना है।
ताजा हादसा हुआ है, ये किस तरह के सवाल खड़े करता है जो अधिकारी हैं, जो सरकार है उसके लिए?
ये जो मीना है, मीना के अंदर एक लॉजिस्टिकल चैलेंज ये है कि आप मीना में कोई एक्सपेंशन नहीं कर सकते, इसलिए मीना एक लिमिटेड एरिया है। और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको इसी मीना वैली में रहना है। अगर इसी मीना वैली में रहना है तो इसकी कैपेसिटी कम है। अगर इसकी कैपेसिटी कम है तो किसी ना किसी हुकूमत को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो दुनिया के जो मुसलमान हैं, जो हज के लिए आते हैं, उनको एक सिलेक्ट इतना ही नंबर या इतना ही कोटा दे दें। लेकिन एक कोटा सिस्टम यूं बना हुआ है मुसलमानों का, जो सऊदी अरब जिसको सिग्नेचरी है, उसमें ये है कि हर वो मुल्क में हर 1000 मुस्लिम पे एक मुसलमान को हज की हज का जो है वो अलॉटमेंट होगा। यानी हिंदुस्तान में अगर 14 करोड़ मुसलमान है तो 14 करोड़ को जो है वो 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो जो 1,80,000 जो आता है वो उसका कोटा है। लेकिन ये मुसलमानों का पॉपुलेशन चूंकि मुसलसल बढ़ता जा रहा है वो कोटा भी बढ़ रहा है, और चूंकि वो कोटा बढ़ रहा है और ये जगह जो है बहुत तंग है, इसमें बहुत ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते, बल्कि बहुत सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो हाजिर आते हैं और वो इस बात से नाराज रहते हैं कि उनको बजाय मीना में ठहराए जाने के खेमों को थोड़ी मीना से थोड़ी दूर बाहर ठहराया जाता है तो वो नाराज होते हैं। तो ये जो लॉजिस्टिकल चैलेंज है, यानी इसको, यानी अगर कोई बहुत बड़ा मैदान होता जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करते थे, ऑर्गेनाइज करते तो अलग बात थी, लेकिन मीना एक माउंटेनस एरिया है, एक साइड से एक माउंटेन दूसरी साइड से दूसरा माउंटेन और बीच के अंदर ये जमरात और तमाम सारे, तो ये जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है उनको शायद बताना पड़ेगा और एक पोलिटिकल डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ इतने हो सकता है कि सिर्फ 15 लाख लोग आ सकते हो जिनको आप मैनेज कर सकते हो, 15 लाख बुलाएं, अगर 10 लाख तो 10 लाख करें।
मीना से ये थे अरब न्यूज़ के संपादक सिराज वहाब, और थोड़ी देर पहले उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार करीब 12 भारतीयों के मरने की भी खबर है, हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है।
बीबीसी इंडिया बोल।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर फिर से विचार करने के लिए कहा।
गुजरात में आरक्षण की मांग कर रहे पटेल समुदाय के लोगों का हिंसक प्रदर्शन।
राजस्थान में वसुंधरा राजे सरकार ने आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 68% की।
बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण से छेड़छाड़ पर आंदोलन की चेतावनी दी।
क्या भारत में आरक्षण नीति पर दोबारा विचार करने का समय आ गया है?
यही है शनिवार 26 सितंबर के इंडिया बोल का विषय।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शाम 7:30 से 8 के बीच इन नंबरों पर मुफ्त फोन करें
1811 7000
और 1800-102-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयरलैंड के बाद अमेरिका दौरे पर हैं और अपने दौरे के पहले दिन उन्होंने आर्थिक एजेंडे पर ज्यादा जोर दिया है। इस सिलसिले में उनकी कई बड़ी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकातें हुई हैं, जिनसे खासकर भारत में निवेश के सिलसिले में बात हुई। आज नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में विकास के मुद्दे पर अहम बैठक में भाग लेंगे। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी।
गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दिन की शुरुआत की वित्तीय क्षेत्र की कई मशहूर कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक से, जिसमें उन्होंने भारत में विदेशी निवेश के मुद्दे पर अमरीकी कंपनियों को समझाने की कोशिश की कि अब भारत में निवेश करने में आसानी के लिए हालात बेहतर किए जा रहे हैं। इस बैठक में अमरीका की 9 वित्तीय कंपनियों के सीईओज ने भाग लिया, जिनमें JP Morgan चेज, AIG इंश्योरेंस, ब्लैकस्टोन आदि शामिल थी। वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में विदेशी निवेश के बारे में लाए जा रहे सुधारों पर जोर दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि वित्तीय कंपनियों के इन सीईओज के हाथ में अरबों डॉलर का निवेश होता है और इन्हें प्रधानमंत्री के साथ सीधी बातचीत करके भारत में इनका विश्वास बढ़ा है, लेकिन कुछ सीईओज ने सुधारों की धीमी गति और कुछ टैक्स मामलों पर चिंता जाहिर की। इस बारे में विकास स्वरूप ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी सीईओज की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें इत्मीनान दिलाया कि निवेश के मामले में जो भी रुकावटें होंगी उन्हें दूर किया जाएगा।
प्राइम मिनिस्टर स्पोक वेरी कैंडिडली, ही आउटलाइंड हिज विजन फॉर इंडिया एंड ही सेज यस एनी बॉटलनेक्स व्हिच शुड नॉट बी देयर विल नॉट बी देयर। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली सेड।
विकास स्वरूप कह रहे थे प्रधानमंत्री ने बहुत सावगोई से बात की, उन्होंने भारत में विकास के बारे में अपना रुख सामने रखा और ये भी कहा कि हाँ, अगर विकास की राह में कहीं कोई रुकावट आती है जो नहीं आनी चाहिए तो उसे दूर किया जाएगा। प्रवक्ता का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का जिक्र करते हुए कहा कि देश के 50 शहरों में मेट्रो रेल बनाई जानी है, गांव-गांव में बिजली पहुंचाई जानी है और सभी लोगों के लिए घर भी मुहैया कराना है और इन सब काम में निवेश के बेहतरीन मौके मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने सैन्य साजो सामान बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ मैरिलिन ह्यूसन से और अमरीकी कंपनी आईकॉम के सीईओ से भी अलग अलग मुलाकात की। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 45 के करीब सीईओ से भी रात्रि भोज पर बैठक कर रहे हैं, जिनमें फोर्ड मोटर, पेप्सिको, जॉनसन एंड जॉनसन आदि कंपनियां भी शामिल हैं। और इस बैठक में भी मेक इन इंडिया के तहत भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर होगा। गुरुवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के मीडिया उद्योग के 11 बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज के साथ भी बैठक की, जिसमें 21st सेंचुरी फॉक्स के चेयरमैन रूपर्ट मडॉक भी शामिल थे। इस बैठक में चर्चा का विषय था कि भारत के विकास में किस तरह मीडिया और आधुनिक संचार तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। आर्थिक एजेंडे के अलावा कूटनीति के क्षेत्र में भी गुरुवार को ही वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। अब आज शुक्रवार को नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDG के महासम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में अगले 15 वर्षों तक विश्व में गरीबी भुखमरी दूर करने और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों को बेहतर बनाने जैसे मुद्दों के लिए नए लक्ष्य तय किए जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के साथ मुलाकात भी करेंगे और कुछ देशों के नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भी होने की उम्मीद है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में भाग लेने पहुंच गए हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच कोई मुलाकात तय नहीं है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
भारत और बांग्लादेश के बीच आधिकारिक तौर पर मवेशियों का कोई व्यापार नहीं होता है, लेकिन गैर आधिकारिक तौर पर यहाँ बड़ी संख्या में मवेशी बाहर से, खासतौर पर पड़ोसी भारत से लाए जाते हैं, जहां गाय को पवित्र जानवर माना जाता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत से हर साल लगभग 20 लाख मवेशी बांग्लादेश लाए जाते हैं। इससे बांग्लादेश में गौमांस की आधी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस साल फरवरी में भारत सरकार ने बांग्लादेश को होने वाले मवेशियों की तस्करी पर पूरी तरह पाबंदी लगाने का फैसला किया, जिसकी वजह से बांग्लादेश के थोक बाजार में गौमांस की कीमत 50% तक बढ़ गई। BBC बांग्ला सेवा की फरहाना परवीन की रिपोर्ट सुना रही हैं हरिता कांडपाल।
मैं इस वक्त बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा पर पुतखाली में हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में छोटे छोटे घर हैं जो बांस से बने हैं। भारत से तस्करी के जरिए लाए गए मवेशियों को इन्हीं घरों में रखा जाता है। इस इलाके का जायजा लेने और स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पिछले 2 महीने से कोई गाय नहीं है। यहाँ कुछ कच्ची पक्की दुकानें बनी हैं जिन पर दुकानदार बैठे हैं और खाली वक्त गुजार रहे हैं। 10 दिन हो गए हैं लेकिन सीमा की दूसरी ओर से कोई मवेशी बांग्लादेश नहीं पहुंचा है। लियाकत अली पुतखाली से मवेशियों को अक्सर चिटगांव लेकर जाते हैं। वो बताते हैं,
दरबारी कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट के लाक्षम थाना, तो गोरु व्यवसाय को
मुझे पिछले 1 साल से नुकसान हो रहा है। मैं उधार ले लेकर अपना धंधा चला रहा हूँ। हर दिन मुझे लगता है कि अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता।
जसोरी से निकलने वाली इच्छा मोती नदी भारत से गायों की तस्करी का सबसे अच्छा रास्ता है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF यहाँ गश्त लगाती रहती है। एक स्थानीय व्यापारी हसन अली का कहना है कि भारत से मवेशियों की तस्करी कम हो गई है।
आगे गोरु मने करें 3,000-4,000-5,000 पीस से एक पीस आशा।
इस खटाल को देखिए, ये कभी गायों से भरा रहता था। इस रास्ते से कम 2,000 गायें आती थीं, लेकिन धंधा अब पूरी तरह बंद हो गया है। हालांकि कुछ दूसरे रास्तों से तस्करी की जा रही है, लेकिन अब बहुत कम गायें आती हैं और झटपट बिक जाती हैं।
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत से हर साल लगभग 20 लाख गायें बांग्लादेश लाई जाती हैं। बांग्लादेश में सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग नाम का एक थिंक टैंक है, वो इस धंधे की पड़ताल कर रहा है। थिंक टैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मुस्तफिजुर रहमान कहते हैं,
गोरु विदेशे
ये मवेशी जैसे ही सीमा पार करके पहुंचते हैं, उन्हें आवारा पशु घोषित कर दिया जाता है, जिनका कोई मालिक नहीं होता। फिर उन्हें इन खटालों में डाल दिया जाता है। बांग्लादेश की सरकार हर मवेशी को सीमा पार करने के बदले 500 टका शुल्क लेती है। बांग्लादेश की सरकार को इस तरह लगभग 1 अरब टका की आमदनी होती है, लेकिन भारत ने इसे कभी औपचारिक रूप से व्यापार मंजूर नहीं किया।
चूंकि इस साल फरवरी से भारत ने सख्ती दिखाई है, इस वजह से मवेशियों की तस्करी कुछ रास्तों से पूरी तरह बंद हो गई है। इसकी वजह से 2 दिक्कतें हुई हैं। बांग्लादेश के कोने कोने से यहां आने वाले व्यापारी अब गाय नहीं खरीद पा रहे हैं, और जो खरीद पा रहे हैं वो बहुत ऊंची कीमत पर गोमांस बेच रहे हैं। बांग्लादेश मीट मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव रबीउल आलम कहते हैं,
एक समय जो अवेलेबल जो छिलो आमी अपने के
पिछले महीने की तुलना में अब हमें लगभग 50% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। फिर मवेशियों को लाने ले जाने का खर्च अलग से लगता है। ऊपर से ये मजबूरी है कि जानवर को मारने के लिए 1 दिन के भीतर ही हमें उसका मांस बेचना होता है।
ये गाबतोली का बाजार है जो ढाका के नजदीक है। यहाँ मेरी कई लोगों से बात हुई और सभी ने कहा कि गोमांस अब उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। इससे सिर्फ गोमांस का धंधा ही मंदा नहीं हुआ है, बल्कि चमड़ा उद्योग भी प्रभावित हुआ है। सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर रहमान चेतावनी देते हैं कि इस वजह से बांग्लादेश का चमड़ा उद्योग बड़े संकट में पड़ सकता है।
फरहाना परवीन जो हमारी BBC बांग्ला की साथी हैं, उनकी रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। भारतीय राज्य पंजाब में सतलुज और ब्यास नदी के बीच जालंधर के पास पलाही नाम का एक गांव है, जहां की उपजाऊ जमीन अपनी लहलहाती फसलों से ज्यादा अपने युवाओं के पलायन के लिए मशहूर है। ये युवा अपनी बहुमूल्य जमीन छोड़कर समृद्धि की खोज में पश्चिमी दुनिया जाते हैं। बीबीसी उर्दू सेवा के हमारे साथी सुहेल हलीम की रिपोर्ट।
पंजाब के पलाही गांव की सुनसान गलियां एक दर्द भरी दास्तान बयान करती हैं। यहां चारों तरफ बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां हैं, लेकिन दरवाजों पर ताले पड़े हैं। जगह जगह मकड़ियों के जाले और ततैयों के छत्ते इस बात के गवाह हैं कि ये कोठियां महीनों से अपने मालिकों के लौटने का इंतजार कर रही हैं।
ओ कीपर, मैनन मैनन मैनन।
पास ही हर रोज सुबह सवेरे इस गांव के कॉलेज में कुछ नौजवान फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए जमा होते हैं। पसीने में डूबे जिंदगी की दौड़ में इन नौजवानों ने अपना सफर बस शुरू ही किया है।
करो 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 पिछले
कर। इनके रास्ते तो अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक है। इनमें जतिंदर सिंह भी शामिल है।
सर जहाँ पर जैसे हम ज्यादा पढ़ ले भी ले, सर नौकरी ऐसे मिलती नहीं जहाँ पर, और जहाँ पर वैसे भी काम नहीं है, लोग वैसे ही पढ़कर वैसे ही। आगे हमारे मकान बन रहे थे सर, बीए आदमी ने की थी ए, तो वो हमारे मकान डाल रहा था सर, पढ़कर क्या फ़ायदा हुआ बीए करके।
इस मैदान में मौजूद हर नौजवान का यही सपना है, और इसे पूरा करने के लिए वो इसी कॉलेज के टेक्निकल कोर्सेज का सहारा लेते हैं।
आप में से बाहर कौन कौन जाना चाहता है, कहे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो।
इस क्लास में श्रीराम जायसवाल मोटर वाइंडिंग का काम सीख रहे हैं।
ये इंडिया में मतलब मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, इसलिए फिर बाहर जाके हम जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं और जो अपनी लाइफ में सेटल कर लेते हैं। इस करके हम ये कोर्स कर रहे हैं, मतलब कोर्स करके हम लोग बाहर जाएंगे तो वहाँ पे अपनी जिंदगी जो है लाइफ सेटल हो जाएगा मतलब।
लेकिन इस कॉलेज के प्रिंसिपल रविंद्र भार्गव को मालूम है कि सबके सपने पूरे नहीं होंगे, कुछ के वीजा लगेंगे, कुछ लाखों रुपए देकर एजेंटों के चक्कर में फंस जाएंगे, और बाकी यहीं रहकर हताशा का शिकार होते रहेंगे।
हमारे बाहर जाने का क्या स्कोप है आपकी आईटीआई में? हम आईटीआई के कोर्स करके बाहर जा सकते कि नहीं जा सकते? मतलब हमें पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो एनसीबीटी सर्टिफिकेट है वो बाहर कनाडा एम्बेसी लेगी या नहीं लेगी, ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी मानेगी या नहीं मानेगी, मतलब उनका यही मेन एक सवाल रहता है।
पलाही एक शानदार गाँव है, पक्की साफ सुथरी सड़कें, हर वक्त बिजली और पानी की सप्लाई, लेकिन स्थानीय लोगों के चले जाने से यहाँ गांव की जिंदगी जैसे बदल गई हो। न शाम को चौपाल पर लोग जमा होते हैं, न दिन में गलियों में कोई नजर आता है।
ये तो कहते हैं भी गांव की रौनक खत्म हो गई, ये लोग तो समझते हैं जी, ये जो सियाने हैं ना बुजुर्ग है वो ये चीज को समझते हैं भी रौनक खत्म हो, ये महसूस करते हैं लोग, हम लोग भी करते हैं रौनक खत्म हो गई।
ज्यादातर घर तो बंद पड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी कोठियों की देखभाल के लिए कुछ हिस्से किराए पर दे दिए हैं। मनोहर सिंह ने यहाँ जिंदगी को बदलते हुए देखा है।
जो गांव के लोग हैं वो सारे तो बाहर एनआरआई हो गए, बाहर सेटल हो गए, यहाँ पर मकान बना जाते हैं, एक महीने वास्ते दो महीने वास्ते आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं। जो बाहर के लोग हैं वही आके जहाँ पर रहते हैं, कोई किराए पे रहता है, कोई फ्री भी रही जाता है।
मेरा गीता सब कीच होवे नहीं केच।
ये तीन नस्लों की कहानी है, एक वो जो बाहर जाने की तैयारी में है, एक वो जो जा चुके हैं, और एक वो जिन्हें उनके लौटने का इंतजार है।
वजी बदाई
अपने बच्चों के लौटने का इंतजार करने वालों में ज्ञानी मेंगा सिंह भी शामिल हैं। वो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में हैं। उनका बेटा उनकी मर्जी के खिलाफ इटली चला गया था।
ते बुजुर्ग जहां अकेले बड़ी मुश्किल से अपने इस बुढ़ापे में गुजर जो समय चल रहा है, मुश्किल से उनको याद करते करते और दुखी होते हैं। उनको जो उस वक्त सहूलत मिलनी चाहिए इसी अपने बच्चों से वो नहीं मिल रही।
जो लोग बाहर बस गए वो अपने बड़े बूढ़ों को भी साथ ले गए, लेकिन सब नहीं। मेंगा सिंह और गांव के बहुत से दूसरे बुजुर्ग इसी कश्ती में सवार हैं। वेस्टर्न यूनियन के रास्ते पैसे तो वक्त पर पहुंचते हैं, लेकिन इनकी तन्हाई इनकी आंखों से झलकती है।
गए कमाने को थे मगर गुआ दिया सब कुछ, अपना धर्म भी गुआ लिया, अपनी सभ्यता भी गुआ ली, सब को खाली होकर बैठ गए।
यही पंजाब के सैकड़ों दूसरे गांवों की भी कहानी है। खुशहाली की तलाश में पलायन का सिलसिला भी जारी है और इंतजार का भी। सुहेल हलीम, BBC, पलाही, पंजाब।
और अब जानते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। अशोक कुमार हमारे साथ स्टूडियो में।
जी विनीत जी, आज के सभी अखबारों में हज यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की खबरें हैं। अमर उजाला लिखता है, ईद के दिन हज यात्रा के दौरान 25 साल में सबसे बड़ा हादसा। अखबार ने बड़ी सी तस्वीर छापी है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह एक के ऊपर एक लोग पड़े हुए हैं। वहीं जनसत्ता की खबर है कि मरने वालों में 4 भारतीय भी हैं। नवा टाइम्स की सुर्खी है इस खबर पर, हज के दौरान मातम। हिंदुस्तान ने इस खबर के साथ साथ यमन में एक मस्जिद में हुए हमले की खबर भी छापी है जिसमें 30 लोगों की मौत हुई थी। अन्य खबरों की बात करें तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा लगातार चर्चा में बनी हुई है। अमर उजाला की खबर है, राहुल गांधी के विदेश दौरे का विवाद और गरमाया। अखबार लिखता है कि राहुल गांधी स्पेन में हैं न कि अमरीका के स्पेन में, जैसा कि कांग्रेस बता रही है, ये कहा गया है भाजपा के हवाले से। दैनिक जागरण ने लिखा है इस पर, राहुल गांधी की विदेश यात्रा के सच पर सवाल। अखबार ने भाजपा प्रवक्ता GVL नरसिम्हा के हवाले से कहा है कि कांग्रेस जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी की शिरकत की बात कर रही है वो तो जून और जुलाई में ही हो चुका है। इसके अलावा सौरभ गांगुली को बंगाल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरें भी लगातार लगभग सभी अखबारों में हैं। वहीं अमर उजाला में RSS प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान है कि आरक्षण पर चर्चा जरूरी है, जिसे आपत्ति हो होती रहे। खास बात यह है कि आरक्षण की नीति की समीक्षा किए जाने के उनके बयान की न सिर्फ विपक्ष ने कड़ी आलोचना की थी बल्कि भाजपा ने भी खुद को इससे अलग कर लिया था। संघ प्रमुख लेकिन अपने बयान पर कायम है। दैनिक भास्कर में सबसे नीचे गूगल के CEO सुंदर पिचाई के उस वीडियो मैसेज का जिक्र है जो सिलिकॉन वैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उन्होंने बनाया है। अखबार की सुर्खी है, मोदी जी गूगल में आपका स्वागत है, सभी को इंतजार है। वहीं जनसत्ता की खबर है, मोदी पहुंचे अमरीका, शिखर सम्मेलन में आज बोलेंगे। अमिताभ बच्चन ने गैस सब्सिडी छोड़ी, ये खबर है नई दुनिया में, यानी अब बिग बी रियायती दाम पर नहीं बल्कि बाजार के मूल्य पर रसोई गैस खरीदेंगे। उधर दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती से जुड़ी खबरें भी सभी अखबारों में दिख रही हैं। नई दुनिया लिखता है, आम आदमी पार्टी ने छोड़ा सोमनाथ भारती का साथ, उनके खिलाफ मुकदमे को दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। ये मुकदमा पिछले साल दक्षिणी दिल्ली में अफ्रीकी महिलाओं के घरों पर आधी रात को जाकर छापेमारी की कार्रवाई करने के मामले में चलेगा। इस बारे में नवा टाइम्स ने हेडलाइन लगाई है, सरकार ने दी भारती पर केस की मंजूरी। आपको बता दें कि सोमनाथ भारती पहले ही विवादों में घिरे हुए हैं और उनकी पत्नी ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया हुआ है और अब ये दूसरा मामला भी उनके खिलाफ बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एक खबर चलते चलते, यमुना में नाव बहाएं बकरों की कुर्बानी का खून, ये कहा है NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, और नदी को प्रदूषण से मुक्त बनाने की मुहिम के तहत संस्था ने ये बात कही है।
शुक्रिया अशोक, लेकिन हम फिर आपके पास आ रहे हैं मुख्य समाचारों के लिए।
BBC समाचार। सऊदी शाह सलमान ने हज यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन से जुड़ी नीति की पूरी तरह समीक्षा के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये आदेश कल हज के दौरान हुई भगदड़ में 700 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद दिया है। पोप फ्रांसिस ने हज के दौरान हुई भगदड़ में हताहत हुए मुसलमानों के प्रति एकजुटता जताई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है और अब दोनों नेता रात्रि भोज पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। हैं। रूस ने कहा है कि जब आगामी सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मिलेंगे तो उनकी बातचीत में सबसे पहला मुद्दा सीरिया से जुड़ा होगा। वहीं ओबामा के प्रवक्ता ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति इस चर्चा में सबसे ऊपर यूक्रेन के मुद्दे को रखना चाहते हैं। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अशोक कुमार, स्टूडियो संभाला देवशीष कुमार ने, मैं हूं विनीत खरे। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में।